Okay, so we now come on to the last of our contemplations.
तो अभी हम अपनी जो अंतिम जो चिंतन है उसकी ओर पहुँचे हैं.
And this is the contemplation, the last contemplation under Dhammanupassana.
तो Dhammanupassana के तहत आने वाला यह अंतिम चिंतन है.
Well, we saw yesterday that probably this was not the part of the original teaching of the Buddha.
तो कल हमने ये देखा है कि हो सकता है कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी है इसे वो उसकी मूल शिक्षा शायद नहीं होगी.
We can't be sure one way or the other.
हमें ये निश्चित ही नहीं है कि ये ऐसा है या वैसा है.
But it's not found in all the different versions.
लेकिन जो बहुत सारी जो आवृत्तियां हैं उसमें यह दिखाई नहीं देती है.
So perhaps it wasn't, probably it wasn't original.
हो सकता है कि यह मूल शिक्षा में यह नहीं होगा.
That doesn't mean it's not useful, it's just probably not where the Buddha put it.
भले ही इसे बुद्ध ने नहीं कहा लेकिन यह उपयोगी नहीं है ऐसा नहीं है.
And it's been added in probably because for the Theravada, the Four Noble Truths was almost, you might say, the main teaching.
और ये इसमें इसलिए शायद सम्मिलित किया होगा कि थेरवादी जो है वह इस चार आर्य सत्य को मूल शिक्षा मानते हैं.
This became for them the dominant way of communicating the Buddha's Dhamma.
तो उनकी ओर से ये बात आई होगी कि उनका जो अधिकार है उस अधिकार से आई होगी कि ये बुद्ध ने कहा है.
But scholars think that it probably wasn't so important earlier on.
और जो विद्वान लोग हैं उनका यह मानना है कि शुरुआत के दिनों में इतनी महत्व की बात नहीं होगी.
Of course, in the Dhammacakkappavattana Sutta, you have the Four Noble Truths.
यानी Dhammacakkappavattana Sutta में चार आर्य सत्य को हम देखते हैं.
But some scholars think that parts of that sutta are quite late.
और यानी जो विद्वान लोग हैं उनका ऐसे कहना है कि यह जो हिस्सा है उसमें वो काफी बाद में सम्मिलित हुआ है.
You know, if you look at a cliff, you can often see the layers by which the rock was laid down.
तो अगर हम इस तरह पर्वतों को अगर देखते हैं किसी पत्थर को तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्तर दिखाई देते हैं हमें.
You can't see it in these rocks because they're lava, not sandstone.
तो यह जो इन पत्थरों में हमें यह बात दिखाई नहीं देती है क्योंकि ये लावा से बने हुए हैं, ये कोई मट्टी से नहीं बने हैं ये.
But in many rocks you can see layers.
लेकिन बहुत सारे पर्वतों में हम यह इस तरह की जो स्तर होते हैं वो देख सकते हैं.
So some scholars can say they see layers within the Pali canon.
तो जो बहुत सारे विद्वान लोगों को यह मानना है कि जो पाली वांग्मय है उसमें बहुत सारे इस तरह के स्तर नजर आते हैं.
So some of those layers are older than others.
और कुछ जो स्तर है वो उसके ऊपर की तुलना में काफी पुराना होता है.
So perhaps the Four Noble Truths was not actually what the Buddha taught at Shravasti, the first teaching.
तो Shravasti.
At Sarnath.
तो सारनाथ में बुद्ध ने जो पहली शिक्षा दी थी तो हो सकता है कि उन्होंने वहां पर ये बात नहीं कही होगी.
We can't be sure.
उसके बारे में हमें पता नहीं है.
The teaching almost certainly did go back to the Buddha, but it didn't have quite such a central place as it's later given.
तो हर कोई शिक्षा जो है जो बुद्ध की मूल शिक्षा की तरफ ही जाती है लेकिन हो सकता है कि उस समय वो बात उन्होंने नहीं कही होगी.
Now this is very interesting because Baba Sahib asks this question.
और ये बहुत रोचक बात है कि बाबा साहब ने स्वयं ये सवाल उठाया है.
You know, in the preface to the Buddha and his Dhamma, he raises a number of problems with the Buddha's teaching.
और जो बुद्ध और उनका धम्म उसका जो उपोद्घात है उसके अंदर बुद्ध ने बाबा साहब ने यह बात कही है कि बुद्ध की शिक्षा को लेकर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई है.
And his first problem is with the Four Noble Truths.
और पहली जो समस्या है वो चार आर्य सत्य को लेकर है.
And he says, is it part of the original teaching of the Buddha?
और वे पूछते हैं कि क्या यह सही मूल शिक्षा है क्या जो बुद्ध ने दी है.
And clearly he thinks it's doubtful.
और उन्होंने उसके बारे में शंका जताई है.
He goes on to say, if it is part of the original teaching, it's a great stumbling block.
The stumbling block?
Something you stumble over.
हाँ हाँ. ये इस तरह की बात है कि अगर ऐसे ही हुआ होगा तो ये बड़ी क्या कहते हैं ये बड़ी दिक्कत हो गई बीच यानी मार्ग के अंदर की दिक्कत है.
Because if all is dukkha, then well, what can you do?
अगर वहां दुख है तो क्या कर सकते हैं?
So actually, in this case, Baba Sahib had not had a chance to understand the teaching fully.
तो इस स्थिति में बाबा साहब को ये जो पूरी शिक्षा है ये समझने में मुश्किल हो रही है.
It's possible to get out of the problem in an easier way than saying it's not the Buddha's teaching.
और ये आसान है कि इस तरह से बाहर चले आए और कहे कि ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है.
So we'll see how that's the case in a little while.
हम इसे देखेंगे कि किस तरह से यह है.
Baba Sahib, I think, raises some very interesting questions, but most of them have got answers.
Baba Sahib ने बहुत ही रोचक ऐसे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब भी हैं.
So I'll offer an answer to Baba Sahib's questions here.
तो यहाँ हम बाबा साहब ने ये जो सवाल उठाया है इसको मैं जवाब दूंगा.
So back to the Four Noble Truths.
तो फिर से हम चार आर्य सत्यों की ओर आएंगे.
Bante says is that the Four Noble Truths are just one application of what is the Buddha's central teaching.
तो यानी बंदे क्या कहते हैं कि यह एक बात है, बुद्ध ने क्या सिखाया उसके तहत.
So the Buddha's central teaching is this teaching of Pratitya Samuppada.
जो बुद्ध की जो केंद्रवर्ती जो शिक्षा है वह यह है कि प्रतित्य समुत्पाद है.
This being, that becomes.
ये होने से वो होता है.
With the arising of this, that arises.
ये निर्माण होने से वो निर्माण होता है.
This not being, that does not become.
अगर ये नहीं होता तो वो भी नहीं होता.
This ceasing, that ceases.
ये इसके न होने से वो भी नहीं होगा.
So according to Bante, this is the main teaching of the Buddha.
और बंते जी का यह मानना है कि यह बुद्ध की मूल शिक्षा है.
The teaching of universal conditionality.
तो यह जो वैश्विक जो संस्कारिता है उसका हिस्सा है.
So you could say that the Four Noble Truths applies that principle.
और हम ऐसा कह सकते हैं कि चार आर्य सत्य जो है वो इसी का एक हिस्सा है.
This being, Trishna,
और ये होने से मतलब तृष्णा होने से
that becomes,
वो निर्माण होता है.
दुख
निर्माण होता है.
With the arising of Trishna, dukkha arises.
तृष्णा निर्माण होने की वजह से दुख की निर्मिति होती है.
Trishna not being, dukkha does not become.
अगर तृष्णा नहीं रही तो दुख भी नहीं रहेगा.
With the ceasing of Trishna, dukkha ceases.
तृष्णा का नाश होने से दुख का नाश होगा.
So it's an application in that way.
तो ये इस तरह से इसे देखा जा सकता है.
So you could say also that it's an application in terms of the second two noble truths.
तो दूसरे जो दो आर्य सत्य हैं उनके बारे में भी इसे देखा जा सकता है.
The noble eightfold path being Nibbana becomes.
तो आर्य अष्टांगिक मार्ग होने से निबान होगा.
And so on.
और इस तरह से.
So it's an application of this principle of universal conditionality.
जो वैश्विक संस्कारिता है उसको किस तरह से वो कार्य करती है इसकी यह शिक्षा है.
And you find it applied in many many different ways throughout the Pali Canon.
और पाली वांग्मय में जो दूसरी भी बातें हैं उसको भी हम इसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं.
For instance, it's in the 12 Nidanas.
जैसे कि यह 12 निदान है.
It's in the Bodhyangas that we looked at yesterday.
और कल हमने जो बोध्यांगों को देखा उसे देख सकते हैं.
It's all the way through this sutta.
और ये सभी जो बातें हैं इसी सूत्र से आई हुई है.
You look at the causes for the hindrances.
हम जो निवारण है उनके कारणों को देखते हैं.
And you remove those causes.
और वो जो कारण है उसको हम वहां से निकाल देते हैं.
So this is the main principle.
तो यह मुख्य तत्व ज्ञान है.
In the Pali Canon it's applied at one point to crops.
यानी पाली वांग्मय में कभी यानी पौधे के बारे में
crops food yeah
yani अन्न के बारे में बात कही है.
The seed is the cause or the condition for the arising of the fruit.
तो जो बीज होता है वो कारण होता है उसी की वजह से फल तैयार होता है.
So what the Buddha says is this that you need to have insight into.
तो ये बुद्ध कहते हैं कि ये बात है जो हमें हमारे भीतर होनी चाहिए.
You need to have an insight into universal conditionality.
यानी जो वैश्विक संस्कारिता है उसके प्रति की अंतर्दृष्टि हमें होनी चाहिए.
When you see that, you're free.
जब हम उसे देखते हैं तो उससे मुक्त हो जाते हैं.
Nothing bothers you.
अने कोई चिंता करने की बात नहीं होती है.
You just watch conditions unfolding outside and inside.
हम केवल देखते हैं कि जो परिस्थिति है वो बाहर और अंदर आ रही है और जा रही है.
This is what we're doing in the six element practice.
यही बात हम छह धातुओं के ध्यान में करते हैं.
We're applying the principle of conditionality to the six elements within ourselves and in the world around us.
और यही बात जो है नी जो संस्कारिता का जो ये कार्य है उसे हम अंदर और बाहर चिंतन करते हैं छह धातुओं में.
So this for Bhante, and I think you can say what he says is true. This is the Buddha's main teaching.
और यह बात भंते ने कही है और जिसे हम सत्य मानते हैं कि यह बुद्ध की मूल शिक्षा है.
And the earliest strata, earliest layer in the Pali Canon is about this.
और ये बिल्कुल शुरू के जो पाली वांग्मय है उसका यह एक मूल स्तर है.
So why do we make so much of dukkha?
तो दुख के बारे में बहुत ज्यादा क्यों कहते हैं हम?
Why is dukkha in at least the Theravada tradition the main teaching?
और थेरवादी जो शिक्षा है उसमें दुख यह मूल शिक्षा क्यों है?
Well, I think there's a good reason.
इसके पीछे बहुत अच्छा कारण है.
It's because dukkha hurts.
क्योंकि दुख जो है वो हमें दर्द पहुंचाता है.
It's because dukkha is dukkha.
क्योंकि दुख है.
We don't want it.
हमें वो नहीं चाहिए.
We don't like it.
हमें वो अच्छा नहीं लगता है.
And if we've got dukkha, we try to get away from it.
जब हमें दुख होता है तो हम उससे दूर जाना चाहते हैं.
When that pig ran at Anomadasi, he saw dukkha coming.
जब मैंने वो जो जंगली सुअर अनोमदासी जी की ओर दौड़ा होगा तो उन्होंने दुख देखा होगा.
So he jumped to avoid dukkha.
तो उस दुख से बचने के लिए उन्होंने बहुत से जोर से कूदी मारी.
So he got a little bit of dukkha rather than a lot of dukkha.
ये एक थोड़ा सा दुख है यानी उसके तुलना में बहुत बड़े दुख है.
If it had been something very pleasant coming his way, maybe he wouldn't have jumped.
अगर कोई बहुत सुखद बात अगर रास्ते में आती तो हो सकता है कि उन्होंने इस तरह कूदी नहीं मारी होती.
If it had been a plate of gulab jamun, he wouldn't have jumped.
अगर गुलाब जामुन की प्लेट अगर सामने आई होती तो कूदी नहीं मारी होती.
He'd have opened his mouth.
इस तरह मुंह खोल दिया होता.
So we don't try to avoid pleasure.
तो जो सुख होता है उसको हम ढकेलना नहीं चाहते.
But pain hurts.
लेकिन दुख जो होता है वो दर्द देता है.
And it creates for us a big problem.
और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या निर्माण करता है.
You could say the main problem of life is dukkha.
हमारे जीवन की जो मूल समस्या है वो है दुख.
If there was no dukkha, no problem.
अगर वहाँ अगर दुख नहीं होता तो कोई समस्या नहीं होती.
Yeah, we just enjoy.
तो हम केवल आनंद उठाते.
You wouldn't have to come on retreat and be silent.
तो हमें शिविर में आने की जरूरत नहीं होती और ना ही मौन का आचरण करने की.
You wouldn't have Subhuti talking at you for 2 hours a day.
और सुबुति को 2 घंटे तक सुनने की जरूरत नहीं होती थी.
You wouldn't be sitting meditating for 8 hours a day.
दिन में 8 घंटे ध्यान करने की भी जरूरत नहीं होती.
You'd be just enjoying sukha.
तो हम केवल सुख का आनंद उठाते.
So it's because of dukkha that there's a problem.
तो दुख है यह बड़ी समस्या है.
And it's dukkha that motivates us to do something about that problem.
तो दुख जो है इसीलिए हम कुछ करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि कुछ करना चाहिए.
You could say no dukkha, no Buddha.
हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दुख नहीं है तो बुद्ध भी नहीं है.
It's literally true, isn't it?
और यह शब्दशः सत्य है.
A rock apparently doesn't feel dukkha.
अरे जो पत्थर होते हैं उसको दुख को अनुभव नहीं कहते.
So you don't find any enlightened rocks.
तो इसीलिए हमें पत्थरों में कोई बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ पत्थर नहीं दिखता है.
Well, I've not met any anyway. Of course, sometimes rocks are carved into Buddhas, but that's only a carving.
कभी हम देखते हैं कि पत्थरों में बुद्ध को बनाया जाता है लेकिन वो केवल शिल्प है.
So you see what I mean? That dukkha is the main issue.
तो आपके समझ में आया होगा कि ये दुख जो है वो मुख्य विषय है.
It's mainly in seeking a solution to dukkha that we follow the spiritual path.
तो बुद्ध में दुख में डूबते चले जाने के लिए यह मार्ग महत्व का है.
We want to get rid of it.
हम उसे अपने भीतर से निकाल देना चाहते हैं.
And it motivates us.
और वो चीज हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है.
It makes us act.
कुछ कार्य करने के लिए हमें तैयार करती है.
And of course, another thing about dukkha is it's a universal experience.
और यह जो दुख है यह एक वैश्विक अनुभव है.
Because don't forget we're not just reflecting on dukkha in here.
तो हम मैंने इसको ध्यान रखिए कि हम केवल अपने यहाँ जो भीतर दुख है उसके ऊपर चिंतन नहीं कर रहे.
We're reflecting on dukkha out there.
हम जो दो बाहर जो दुख है उसके ऊपर भी चिंतन कर रहे हैं.
Because even if we don't experience dukkha in here, we encounter dukkha in others around us.
तो भले ही हम अपने भीतर यहाँ दुख नहीं देख पाएंगे लेकिन बाहर आजू बाजू में बहुत सारा दुख है.
And that brings us the problem of society.
और हमारे समाज में इसकी वजह से समस्याएं आती हैं.
It brings us the problem of suffering within society.
और इसी की वजह से हम देखते हैं कि समाज में दुख होता है.
So yes, so Buddhism begins with dukkha because it hurts and we want to get away from it.
तो इसीलिए हम बुद्ध धर्म में इस दुख को शुरू में देखते हैं क्योंकि वह दुख यानी दर्द पहुंचाता है हमें.
One of Bhante's first pieces of writing was called Where Buddhism Begins and Why It Begins There.
और बुद्ध भंते जी की शुरुआत की कुछ जो लिखा है उन्होंने कहा है कि
Where Buddhism begins and why it begins there.
यानि बुद्ध धर्म कहाँ से शुरू होता है और क्यों शुरू होता है वहाँ से.
And of course it begins with dukkha and it begins there because it hurts.
और जाहिर है कि वो दुख से शुरुआत होता है क्योंकि दुख हमें दर्द देता है.
So the Four Noble Truths apply the principle of universal conditionality to our main problem.
तो यह जो चार आर्य सत्य है यह वैश्विक जो संस्कारिता है यह उसकी मूल समस्या है.
So let's look at how the Buddha dealt with it.
तो इसे हम देखेंगे कि बुद्ध ने किस तरह इसे देखा है इस चार आर्य सत्य को.
So let's start with dukkha itself, the first noble truth.
तो दुख से शुरुआत करते हैं जो पहला आर्य सत्य है.
So the first noble truth says there is dukkha.
और पहला आर्य सत्य ये कहता है कि वहाँ दुख है.
It doesn't say that everything is suffering.
यानी उन्होंने ऐसे नहीं कहा है कि सभी कुछ दुख है.
Because obviously there's pleasure, there's sukha.
क्योंकि वहाँ यानी कुछ सुख भी है.
And this is where Baba Sahib maybe hadn't had a chance to understand what the Buddha was saying fully enough.
तो इसीलिए हो सकता है कि बाबा साहब को इतना पर्याप्त समय नहीं मिला होगा कि ये समझने के लिए.
The Buddha wasn't saying that even your happiness is actually suffering.
तो बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि भले ही आप आनंद की अवस्था में हैं और वो दुखदायी है.
A pleasant feeling is a pleasant feeling.
और सुखद जो अनुभव होते हैं वो सुखद ही होते हैं.
And you can't deny that.
और उसे हम नकार नहीं सकते हैं.
So the first noble truth isn't saying, well, forget about sukha, just concentrate on dukkha.
पहला आर्य सत्य ये नहीं कहता है कि सुख के बारे में भूल जाइए और केवल दुख के बारे में सोचिए.
It's saying remember that even when sukha is there, dukkha is coming.
वो ये कहता है कि भले ही वहाँ सुख हो लेकिन उसे दुख आएगा ही.
You could say also that remember when dukkha is there, sukha is coming.
और हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जहाँ दुख है वहाँ सुख आएगा ही.
But the main point is that you cannot avoid dukkha.
लेकिन मुख्य बात यह है कि हम दुख को टाल नहीं सकते हैं.
You can have long periods of your life when you don't experience much suffering.
हमारे यानी इस लंबे जीवन में हमने दुख को अनुभव किया है.
But sooner or later it will come.
और वो यानी कभी ना कभी वो आता ही है.
And it will come probably sooner rather than later.
यानी वो बहुत यानी देर से आने के बजाय वो जल्दी ही आता है.
So some element of dukkha is present in all human existence.
यानी जो भी मनुष्य का जो अस्तित्व है उसमें दुख का अस्तित्व है ही.
And the Buddha says we need to recognize that and try to learn the lessons of it.
और बुद्ध कहते हैं कि हमने उसे समझना चाहिए और उसे कुछ सीखना चाहिए.
Now when the Buddha says dukkha, he means something quite complicated.
जब बुद्ध दुख के बारे में कुछ कहते हैं तो बहुत ही कुछ जटिल बातें कहते हैं.
So we need to understand more fully what he means.
तो हमें ये पूरी तरह समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं.
And this maybe also helps us to meet Baba Sahib's problem.
और ये हो सकता है कि यही बात बाबा साहब की भी समस्या होगी.
So broadly the Buddha said there are three different kinds of dukkha.
और विस्तृत रूप से अगर देखा जाए तो बुद्ध कहते हैं कि तीन प्रकार के दुख है.
You might almost say three different levels of dukkha.
हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दुख के तीन अलग अलग स्तर हैं.
So the first level of dukkha is what is called in the commentaries dukkha dukkha.
तो पहला दुख क्या है जो यानी टीकाओं में जिसके बारे में कहा है वो है दुख दुख.
That is the dukkha that is immediate actual pain.
तो ये ऐसा दुख है जो यानी तात्काल जिसको हम अनुभव करते हैं.
It's especially the pain of the physical body being harmed.
तो ये ऐसा दर्द है जो हमारे जो भौतिक शरीर है उसको कुछ चोट पहुंची है.
So it's dukkha belonging to the body.
ये जो दुख है हमारे शरीर से संबंधित है.
And it's indisputable. You can't dispute it.
हाँ, इसमें कोई दुमत नहीं है.
If I hit poor old Ratnashil again,
तो अगर इस तरह मैं रत्नशील को एक गुदा लगाता हूँ फिर से,
he can't say that that pain is not pain.
तो वो ऐसा नहीं कह सकते ये जो दर्द है वो दर्द नहीं है.
The nerve cells are sending ends are sending messages to his brain. Ow.
तो ये जो मज्जा संस्था है उसको चोट लगेगी और वो तुरंत भेजे को मैसेज भेज देगा कि हाँ कुछ हुआ है.
But of course that's only one kind of pain.
लेकिन ये एक ही प्रकार का दुख है.
There's another level to pain.
लेकिन दूसरा का दुख का एक दूसरा स्तर है.
And that is pain in which the mind sense plays a part.
तो इसमें हमारा मन जो है वो हिस्सा लेता है.
So, a pig runs towards you.
उदाहरण के तौर पर ये जो सुअर है वो हमारी ओर दौड़ रहा है.
You don't feel any physical pain yet.
अभी तक हमें कोई यानी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है.
But your mind constructs from what it's seeing an image of pain.
तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो आने का उसे तुरंत हमारे मन को धक्का लगता है और उससे दर्द होता है.
And you jump to avoid it.
और उसे टालने के लिए हम कुदी लगाते हैं.
And I must congratulate Anumadasi on his jump.
तो मैं आनंददासी जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से कुदी मारी.
But it is interesting, isn't it, that it was his mind that constructed the idea of a pain that would come.
तो ये बड़ी रोचक बात है कि उन्होंने अपने मन में उन्होंने देखा कि जो दर्द है वो आ रहा है.
And then his body avoided it.
और जो शरीर है उसे टालना चाहता है.
So yes, a lot of our pain is constructed in the mind.
तो बहुत सारा जो दर्द है वो हमारा मन उसको तैयार करता है, अनुभव होता है.
So for instance, you can be sitting here quite at ease, quite at peace.
तो हम जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हुए बहुत ही आराम से बैठे हैं और शांति से बैठे हैं.
But if you think of some problem that's waiting for you back home, pain comes into your mind.
लेकिन जैसे ही हमारे मन में ये बात आएगी जैसे हम घर लौटेंगे तो कुछ समस्या है वहाँ पर तो दर्द चला आएगा.
If you think of something that somebody said to you 5 years ago, pain comes into your mind.
अगर यहाँ बैठे 5 साल पहले हमें कुछ कहा है वो याद आया तो हमारा मन दुख को तैयार करता है.
So the mind constructs pain.
तो मन जो है ये दुख को रचता है.
It constructs remembered pain.
वो यानी यादों के जरिए दुख को तैयार करता है.
It constructs an anticipated pain, pain to come.
जो आने वाला दर्द है उसके बारे में सोचकर वो दुख को तैयार करता है.
It fears the loss of pleasant present pleasure.
तो जो अभी का जो सुख है उसे भूलकर यानी भय तैयार होता है वहां पर.
Sometimes when you're really enjoying yourself, into your mind comes a thought, this is going to end.
तो जब कभी हमें सुख का आनंद उठाते रहते हैं तभी एक हल्का सा विचार आता है कि ये चला जाने वाला है.
I've been thinking about this because you see more and more in India these gated communities, guarded communities. These localities or what do you call them? Colonies, which have got a wall and guards.
तो यानी भारत में हम देखते हैं कि जहाँ जो कुछ जो बिल्डिंगें होती है ऐसा कुछ एक वस्ती होती है वहाँ पर लोग यानी दीवार वगैरह लगाकर उसे उसकी रक्षा करते हैं.
There are several near Lonavala.
यानी इस लोनावला में हम बहुत सारे देख सकते हैं.
They're big cities almost, but with walls around them, guards guarding them.
यानी बड़े शहर में भी हम अपने आप को अपने इर्द गिर्द दीवारों को खड़ा कर खुद की रक्षा करते हैं.
रिच पीपल लिव इनसाइड देयर.
जो बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं वो उसके बीच में रहते हैं.
एंड प्रोबेबली दे हैव गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट एट लीस्ट फॉर देयर सेंसेस.
यानी वो अपने जो इंद्रिया है उसे काफी सुख उठाते हैं.
But they know all around them is danger.
लेकिन वो जानते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द जो है बहुत खतरा है.
So they have to pay for a gate and a wall and guards.
तो वो जो दीवार है और वो जो रक्षा करने वाले जो लोग हैं उसको उन्हें कुछ देना पड़ता है उसके लिए.
So even in our pleasure, insecurity is often there.
तो भले ही हम सुख में रहते हैं लेकिन वहां भी एक असुरक्षितता होती है.
The mind always recognizes the limitations of happiness.
तो मन ये हर पल जानते रहता है कि जो कुछ भी वहां सुख है वह बहुत ही मर्यादित है.
You could say that, for instance, in an unequal society, even those at the top of that society experience insecurity.
भले ही यानी ये असमानता की जो समाज रचना है उसमें जो ऊंचे स्तर के जो लोग हैं वो भी असुरक्षित अपने आप को पाते हैं.
They know that there are people who don't have what they have.
वो जानते हैं कि लोगों को जो चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है.
They know that those people want what they have.
लोग उनको ये पता है कि लोग चाहते हैं उनको जो चाहिए वो.
So they're insecure.
इसीलिए वे असुरक्षित होते हैं.
There's a story in the Udana about this, isn't there?
और उदान में इसके बारे में कथा है.
There was one of the Buddha's disciples who'd been a king.
तो बुद्ध का एक शिष्य है वो जो राजा है.
And he left his kingdom and became a bhikshu.
और उन्होंने अपना जो राजपाट है वो छोड़कर वो भिक्षु बन गए.
And so one day he was sitting down and he was just saying, "Oh, bliss, bliss."
और एक एक दिन वो ऐसे ही यानी बैठे हुए थे और इस तरह से बोल रहे थे कि आशीर्वाद.
No, bliss, bliss, not
सुख. हाँ, सुख, सुख.
आनंद, आनंद.
आनंद, आनंद ऐसा कह रहे
हैं. And so some of the Buddha's disciples heard him saying this.
और बुद्ध के एक और शिष्य ने उनको सुना ऐसे कहते हुए.
And they said they thought, you know, they got that sort of mind that we've got in our sangha too.
तो उनको लगा कि ये कोई यानी पागल हुआ मन है जैसे हमारे संघ में भी है.
Look at him, that old Raja.
तो वो यानी उसको यानी पुराने राजा की तरह से देख.
He's dreaming of his palace. He's dreaming of his wives, his 500 wives.
यानी वो उसके यानी राजमहल के बारे में सोचता होगा, उसकी 500 जो रानी है उनके बारे में सोचता होगा.
And he's thinking, oh, what bliss it was when I had all that.
वो इसीलिए सोचता कि कितना सुख है, कितना आनंद है, ये मेरे पास सब कुछ था.
So again, just as in our sangha, they go and tell the Buddha.
और इसी संघ हमारे संघ की तरह है, वो गए और बुद्ध को बता दिया.
Look at him, he wants to be back in a kingdom.
देखिए कि उन्हें ये राजपाट फिर से चाहिए.
I'm afraid they were just like us, those bhikshus.
या वो भिक्षु जो है हमारी तरह ही होगा.
Anyway, the Buddha said, okay, bring him to me.
और फिर बुद्ध ने कहा ठीक है उसे मेरे पास ले आइए.
So the Buddha said, well, were you saying, आनंद, आनंद?
तो बुद्ध ने कहा कि क्या आप ऐसा कह रहे थे कि आनंद है, आनंद है?
He said, yes, I was.
और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही मैंने कहा है.
So he said, well, why? Why were you saying that?
लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ऐसा आप क्यों कह रहे थे?
He said, well, I was thinking of my life when I was in my kingdom.
मैं मेरे जीवन के बारे में सोच रहा था कि जब मैं मेरे राज में रहता था.
And I was remembering that even though I had 500 wives and a beautiful palace.
यानी भले ही यानी वहां यानी 500 रानियां थी और एक सुंदर सा राजमहल था.
I was all the time insecure.
और हर पल मैं अपने आप को असुरक्षित पाता था.
I had to have guards around my palace.
मेरे राजमहल के इर्द गिर्द बहुत सारे सुरक्षा रक्षक थे.
And I couldn't trust those guards.
और मेरा उनके ऊपर फिर भी भरोसा नहीं था.
I had to have guards to guard the guards.
तो मेरे पास यानी जो सुरक्षा रक्षक है उनको उनकी तरफ उनको देखने के लिए और भी रक्षक रखे थे.
He said, look at my life now.
लेकिन अभी मेरा जीवन देखिए.
I have nothing.
मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है.
But I'm completely happy.
लेकिन मैं पूरी तरह आनंदी हूँ.
So he said, it's comparing my life now to my life then, I realize how happy I am now.
और मैं यानी पूर्व की जीवन की तुलना में जब आज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अब कितना सुखी हूँ.
So even when we seem to be very happy, underneath there's some unhappiness.
तो भले ही हम यानी अपने आप को आनंदी महसूस करते हैं लेकिन वहां नीचे कुछ तो भी ऐसा है जो इतना आनंदी नहीं है, सुखी नहीं है.
It's a bit like having a mango in the monsoon season.
यानी ये ऐसा ही यानी इस मानसून के सीजन में आम की तरह
Dharmashalin and Suvadra and I have been experiencing this kind of dukkha.
So Dharmashalin, Suvadra और मैंने अब इस तरह के दुख को अनुभव किया है.
You see this beautiful mango.
हम देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर आम है.
But you don't know what it's going to be like inside.
लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है.
You think, yes, this one is perfect.
हमें लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है.
You cut it open.
हम उसे काट कर खुला कर देते हैं.
It's rotten inside and there's a worm.
और जब उसे निकाल दे तो वो छोटे कीड़े होते हैं उसके अंदर.
So the second kind of dukkha is the kind of dukkha that your mind creates by recognizing the impermanence and unsatisfactoriness of things.
तो यह जो दूसरा दुख है, ये हमारा मन तैयार करता है कि जो सुख है उसके नीचे यानी वो सुख जो है वो अनित्य है और रुकने वाला नहीं है.
And it's going on all the time.
और ये हर पल चलते रहता है.
It's never far away.
ये यानी हमसे ज्यादा दूर नहीं है.
Even when you're thoroughly enjoying yourself, somewhere at the back of your mind is the realization this can't last.
भले ही हम बहुत ही आनंद की स्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम यह जानते हैं कि ये टिकने वाली बात नहीं है ये.
There's a very famous story in the West.
यानी एक बहुत ही लोकप्रिय कथा है वहाँ पश्चिम में.
And it's about a man who makes a bargain with the devil.
Devil.
वो
शैतान. एक जो इंसान है जो शैतान के साथ कुछ है बात कर रहा है.
And he says to Shaitan is that you give me all satisfaction and you can have my soul.
वो है ना शैतान से कहता है कि मुझे सभी प्रकार का सुख तू दे दे और उसके बदले मैं मेरी आत्मा ले ले.
But he says there's one condition.
लेकिन वो कहता है कि इसके लिए एक शर्त है.
The satisfaction that I experience must be without insecurity.
लेकिन वो कहता है कि यानी पूरी तरह की संतुष्टि मुझे होनी चाहिए, कोई भी असुरक्षित भाव नहीं होना चाहिए.
It must be so complete that satisfaction that I don't want anything else.
तो यानी वो ऐसी चीज चाहिए जो मुझे पूरा समाधान दे सके, पूरी संतुष्टि दे सके, और अभी मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी भाव होनी चाहिए.
So Shaitan tries to give him that.
तो जो शैतान होता है वो उन्हें बहुत देने की कोशिश करता है.
But he can't give it to him.
लेकिन वो उस चीज को उसे नहीं दे पाता.
It's impossible.
ये अशक्य है.
Not at least on the conditioned level.
और कम से कम जो संस्कारित जो स्तर है हमारा, इस स्तर पर तो शक्य नहीं है.
So that's the second kind of dukkha.
तो ये दूसरे तरह का दुख है.
The dukkha that comes from the mind's realization that everything is impermanent.
तो ये मन यह जानता है कि सभी कुछ जो है वह अनित्य है.
And even the best pleasure cannot last.
लेकिन यानी ये जो सर्वोत्तम जो सुख है वो भी यानी वो अंतिम सुख नहीं है.
Then there's a third kind of dukkha.
तो तीसरे प्रकार का दुख है कौन है?
That's khanda dukkha, skanda dukkha.
और यह khanda dukkha या skanda dukkha है? Skanda.
तो khanda in Pali, skanda in Sanskrit.
तो khanda जो है वो पाली में है और skanda संस्कृत में है.
So this is the sort of deepest level of dukkha.
तो यह यानी दुख का एक बहुत ही यानी गहरे स्तर पर यह दुख है.
I'll approach this through our experience of the six element practice.
यानी छह धातुओं के साधना में हम इसे देख सकते हैं.
When we're in the sixth stage of the six element practice, we've got some experience of ourselves free from the elements.
तो जब हम छठे धातुओं के ऊपर जब चिंतन करते हैं तो कुछ हद तक हम ये यानी अपने आप को मुक्त पाते हैं.
We just got a little taste of it at least.
यानी
a little taste of it.
यानी जो छोटा सा भी जो स्वाद होता है वो भी वहाँ नहीं होता है.
We can sense, we can imagine what it's like to be completely free of craving for the dhatus.
तो धातु के भीतर से जो भी सुख होता है यानी सुख होता है उससे कैसी मुक्ति होती है, इसे हम वहाँ थोड़े स्तर पर क्यों ना हो अनुभव करते हैं.
And that freedom is intense bliss.
और वह जो मुक्ति है, वह जो स्वतंत्रता है, वो बहुत ही सुख देने वाली है.
It can't be shaken.
वो जो है वो अविचल होती है.
But what we do is we identify ourselves with the five skandhas.
वो कब होता है जब हम अपने जो पांच धातु है उसको अपने आप को पहचानते हैं कि पांच धातु से बना है.
So we miss this experience of our minds, of our consciousness, completely free.
तो ये पांच धातुओं से पहचानने की वजह से ये बात हम में से छूट जाती है कि इस तरह भी मेरा मेरा चित्त चेतना इस तरह है.
So to be identified with the skandhas, to be identified with the dhatus is suffering.
तो अपने आप को इन धातुओं में देखना, इसे पहचानना, यह दुख का कारण है.
Because it's not the experience of complete happiness and peace which is their giving up.
वो हमें पूरी तरह सुख या सुख नहीं दे सकता है, इसके लिए ये दुख है.
So it's the sense that there has to be something more.
तो यह इस तरह की भावना है कि और कुछ तो भी चाहिए.
Just to be identified with the skandhas is painful.
तो यह जो स्कंद है, यानी इसको हम पहचानते हैं कि ये स्कंद है.
We're limiting ourselves.
हमने अपने आप को मर्यादित बना लिया है.
It's as if we're putting something that's very, very big into something very, very small.
तो बहुत कुछ तो भी ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो हम एक छोटी सी वस्तु में उसे रखना चाहते हैं.
It's as if we're trying to put the sky into a small pot.
तो ऐसे है कि एक ये जो बड़ा सा जो आकाश है उसे हम एक छोटे से बर्तन में रखना चाहते हैं.
So there's a deep feeling of wanting more.
तो यह बहुत ही गहरी ऐसी भावना है कि कुछ और चाहिए.
This is what the Buddha felt when he was at home.
यानी बुद्ध जब घर में रहते थे यही बात वो देख रहे थे.
Narrow and dusty is this life at home.
घर के जीवन में, घरेलू जीवन में उन्होंने बहुत ही वो संकुचित है और बहुत ही कूड़ा कचरा एक तरह से.
He wanted something more, something greater.
वो कुछ तो भी और भी ज्यादा चाहते थे, कुछ तो भी और भी जो महान है वो चाहते थे.
So this deepest level of dukkha is what drives us onwards and upwards in the spiritual life.
तो ये जो बहुत ही गहराई में ये जो दुख है वो हमें जब ऊपर आता है तो हम आध्यात्मिकता की ओर चले जाते हैं.
So it's a bit like going to the cinema.
इस तरह से कि जैसे हम सिनेमा जाते हैं.
And you watch a film.
और हम एक पिक्चर देखते हैं.
It's very well made.
बहुत ही अच्छी तरह से बनाई हुई होती है.
It's very well acted.
बहुत ही अच्छी तरह से अभिनय की हुई होती है.
The whole drama is very well put together.
जो पूरा पूरा पूरी जो नाटक है उसके अंदर का वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ होता है.
And you're quite engaged while you're watching it.
जब हम उसे देखते हैं तो पूरी तरह उसके साथ जुड़ जाते हैं.
But you come out feeling disappointed.
लेकिन हम हमारे अंदर कुछ तो भी असमाधान की भावना होती है.
Because nothing has really been said.
लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो सचमुच कुछ कह रहा है हमें.
Nothing that touches you deeply.
हमारे अंदर बहुत ही भीतर कुछ ऐसा स्पर्श नहीं कर रहा है.
Even though it was in many ways very, very good.
भले ही वो बहुत ही अच्छा है बहुत अर्थों से.
It doesn't touch on some deep needs within you.
लेकिन वो हमारे जो बहुत गहराई में जो हमारी जरूरतें हैं उसे स्पर्श नहीं करती होगा.
So many Hollywood films, so many Bollywood films are like this.
बहुत सारी हॉलीवुड की और बॉलीवुड की जो फिल्में हैं इस तरह की हैं.
They're very good in some ways.
वो बहुत अच्छी होती है कुछ अर्थ से.
But they don't really speak to something deep inside you.
जो बहुत हमारे जो बहुत गहराई में है उसके साथ वो कुछ बात नहीं करती है.
So yes, you're happy in some ways.
यानी कुछ अर्थ से हमें आनंद आता है.
But you're unfulfilled.
लेकिन हम अभी भी अपूर्ण महसूस करते हैं.
So you could say dukkha is unfulfillment.
तो हम ये कैसा ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा दुख है जो जो पूरा अपूर्ण है.
You're not getting everything that you think you can get from life.
यानी जीवन से हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें पूरा नहीं मिल रहा है, इस तरह की यह भावना है.
It's a very, very important feeling.
ये बहुत ही महत्व की भावना है.
It's what drives one on the spiritual life.
तो ये बात हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जा सकती है.
Yes, that meditation was good.
यानी हाँ, यानी ध्यान बहुत अच्छी बात है.
But there's more.
लेकिन कुछ और चाहिए.
Yes, that understanding of the Dharma was deep.
हाँ, यानी ये जो हमारी धर्म की जो समझ है वो बहुत गहरी है.
But there's more.
लेकिन और चाहिए.
This is what drives you on the spiritual life.
ये यानी हमारे धर्म जीवन को आगे की ओर ले जाती है बात.
Yes, that order meeting was good.
यानी हमारी जो धर्मचारियों की जो सभाएं होती है वो अच्छी होती है.
But there's more.
लेकिन और चाहिए.
That communication was good.
यानी हमारा संपर्क अच्छा है.
But there's more.
लेकिन और कुछ चाहिए.
So it's this feeling of wanting more that drives us on the spiritual path.
तो यह जो कुछ और चाहिए, यह जो भावना है, यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रोत्साहित करके आगे ले जाती है.
So these are the three kinds of dukkha.
तो ये तीन प्रकार के दुख हैं.
So you can see here that this is the answer to Baba Sahib's problem.
तो हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो समस्या उठाई है उसका ये जवाब हो सकता है.
We're not saying that there's actual bodily pain all the time for everybody.
यानी हम ऐसा नहीं कहते कि यानी केवल शारीरिक दुख होता है लोगों के जीवन में.
We're not saying that there isn't an experience of mental satisfaction.
हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि केवल यानी मानसिक जो असमाधान होता है उससे दुख होता है.
But we're saying that there's physical pain always coming and going.
हम ऐसा कहते हैं कि जो शारीरिक दुख है वो हमेशा आता है और जाता है.
And we're saying that even in our mental satisfaction, there's a sense of insecurity.
हम ये देख सकते हैं कि यानी ये जो मानसिक संतुष्टि है वो असुरक्षितता पर निर्भर है.
And we're saying that as long as we have not escaped identification with the five skandhas, there will be some sense that there's more.
तो जब तक यानी ये पांच स्कंदों की प्रति जो हमारी भावना है उसको जब तक हम त्याग नहीं देते तब तक कुछ और चाहिए ये बात बनी रहेगी वहां पर.
So, why?
क्यों?
Because of tṛṣṇā.
तृष्णा की वजह से.
Because we're attached.
क्योंकि हम आसक्त हैं.
Because we're attached to the situations and things around us.
जो भी इर्द-गिर्द हमारे इर्द-गिर्द जो भी परिस्थिति है उसको हम आसक्त हैं.
Because we're attached to particular things and particular people.
हम कुछ लोगों के प्रति कुछ घटनाओं के प्रति हम ज्यादा आसक्त होते हैं.
Because we're attached to the body.
और हम अपने शरीर के प्रति आसक्त हैं.
Sooner or later, suffering will come.
यानी कभी न कभी दुख आने वाला ही है.
But it goes deeper than that, of course.
लेकिन ये इसे भी गहराई में जाता है.
Because we're attached to the five skandhas, the five dhatus, then we will suffer.
यानी हम पांच धातुओं के प्रति आसक्त है इसलिए हमें दुख है.
We're not experiencing what we really can be.
हम ये सचमुच नहीं जानते कि हम क्या है.
We're like the famous little bird that thinks it's a duck.
हमें एक यानी वो छोटी सी पंछी की कथा पता होगी कि वो अपने यानी वो जो बदक है.
That this little bird, parents were killed.
ये जो छोटा पक्षी है उसके जो माता पिता हैं जो मारे गए हैं.
And some ducks came along and adopted it and brought it up.
और कुछ जो बदक होते हैं वो उसे दत्तक ले लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं.
And it thought it was a duck.
और वो सोचने लगता है कि मैं भी बदक हूँ.
But one day it met a swan.
और एक दिन उसे पता चलता है कि वो तो हंस है.
And the swan said, "Why are you behaving like a duck?"
Sorry, यानी एक दिन एक हंस आता है, वो कहता है कि तू इस बदक की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है?
You're a swan like me.
वो कहता है कि तू मेरी तरह एक हंस है.
Why are you pretending to be a duck?
क्यों आप अपने आप को बदक समझ रहे हो?
So we're pretending to be ducks.
तो हम अपने आप को बदक की तरह समझते हैं.
We're pretending we're the five skandhas.
हम पांच स्कंदों के साथ अपने आप को देखते हैं.
Really we're completely free from them.
लेकिन वास्तव में हम उससे पूर्णतः मुक्त हैं.
So as long as we identify with the five skandhas, we don't experience freedom.
तो जब तक हम पांच स्कंदों को सही मायने में जानते नहीं है तब तक इस विमुक्त मुक्ति को अनुभव नहीं करेंगे.
So that craving, that grasping onto the five skandhas is what causes our deepest suffering.
तो यह जो पांच स्कंदों में जो हमारी आसक्ति है उसकी वजह से हमें दुख निर्माण होता है.
Then the fourth noble truth is the truth of nibbana.
तो चौथा जो आर्य सत्य है वह है निर्वाण.
The end of suffering.
तो दुख का अंत है.
And well, it's quite simple. What is nirvana?
तो ये बहुत आसान है कि निर्वाण क्या है.
It's the point at which we just completely give up craving.
यह ऐसा बिंदु है जहां पर हमने पूरी तरह अपनी जो तृष्णा है उसे त्याग दिया है.
It's where we've stopped on identifying with the skandhas altogether.
यानी स्कंदों के साथ हमारी जो पहचान है उसे हमने पूरी तरह त्याग दिया है.
It's where we've stopped identifying with the dhatus altogether.
ये जो धातु है इन धातुओं के साथ हमारी जो पहचान है उसे भी हमने पूरी तरह त्याग दिया है.
Consciousness is completely free.
हमारी जो चेतना है वो पूर्णतः मुक्त है.
So nibbana is that point.
और निब्बान जो है वह यह बिंदु है.
It's the point at which we got completely rid of Krishna.
यह ऐसा बिंदु है जहां पर हमने तृष्णा को पूरी तरह नाश किया है.
And it's an supremely positive and pleasant experience.
और ये बहुत ही सकारात्मक और सुखदायी ऐसी स्थिति है.
It's not the end.
और उसे कोई अंत नहीं है.
We shouldn't think that nibbana is like arriving in the retirement home.
और निब्बान को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कोई आदमी निवृत्त हो गया है नौकरी से.
But what happens after that, we've got no way of thinking about.
तो उसके बाद क्या होता है कि हमें उस तरह से सोचने की कोई जरूरत नहीं होती है.
Because all our ways of thinking are to do with the five skandhas and with craving.
हम ये सोचते कि जो कुछ भी हमें बातें प्रवृत्त करती है वो पांच स्कंद और पांच धातुओं के साथ.
But when you've let go of them, well, this is a continuing, supremely positive experience.
तो जब हम इन धातुओं और स्कंदों को जाने देते हैं तो यह पूरे संपूर्णतः सुखदायी स्थिति है.
You look at the Buddha. He continued to function for many years after his enlightenment.
And हम बुद्ध की ओर देख सकते हैं वो बोधि प्राप्ति के बाद उन्होंने कई सालों तक सातत्य से क्रियाशील थे.
So the question comes, how do we arrive at nibbana?
तो सवाल ये है कि हम निब्बान तक कैसे पहुंच सकते हैं?
How do we get rid of suffering?
हम ये जो दुख है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं?
Well, we do it by removing the cause.
और ये जो कारण है उसको हटाकर ये बात हो सकती है.
And the cause of suffering is Krishna.
और दुख का कारण जो है वो तृष्णा है.
So the whole of our spiritual lives is learning to stop clinging.
तो हमारे पूरी जीवन की जो धर्म जीवन की जो शिक्षा वो ये है कि आसक्त होने से अपने आप को रोकना है.
To do that we have to have faith that not clinging is something extremely positive.
भले ही बहुत ही क्या सकारात्मक है फिर भी हमें उसमें आसक्त नहीं होना है.
We have to believe that when we let go, we will have an extraordinarily positive experience.
जब हम किसी इन चीजों को जब जाने देते हैं तो हम जो असाधारण जो सुख है उसे अनुभव सकते हैं.
And in fact, we'll be escape completely from suffering, and our experience will be nothing but happiness.
तो जब हम दुख को पूर्णतः छोड़ देते हैं त्याग देते हैं तो दुख के सुख के सिवा हमारे जीवन में और कुछ नहीं होगा.
It'll be a happiness we can't even understand. It'll be a happiness we can't even understand.
समझ भी नहीं सकते हम. ये ऐसा सुख होगा जिसे हम समझ नहीं सकते.
So how do we do it?
तो ये कैसा करें?
Well, you come on retreat.
तो शिविर में आइए.
You get up at 5:30.
5:30 बजे उठिए.
You do your exercise.
अपनी जो कसरत है उसे कीजिए.
You meditate.
ध्यान कीजिए.
You practice smriti.
स्मृति का सराव कीजिए.
Etc.
और इत्यादि.
You practice the dhamma.
हम धम्म का आचरण करना है.
You follow the eightfold path.
आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना है.
You develop the four satipatthana.
चार सतीपट्ठानों का विकास करना है.
You develop the bojangas.
बोध्यांगों को विकसित करना है.
This is how you do it.
और ये चीजें हैं जो हमें करनी है.
That's what we're doing.
और यही इसीलिए हम ये कर रहे हैं.
We're trying to follow the path.
हम जो मार्ग है उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं.
And perhaps we're just a little bit freer than we were from Krishna.
तो इसकी वजह से ये जो तृष्णा है इसे हम थोड़ी सी मुक्ति को अनुभव करते हैं.
Perhaps we're experiencing a little bit more of the pleasure of letting go.
तो जाने देने की वजह से जो सुख होता है उसको हम थोड़ा क्यों ना अनुभव कर रहे हैं.
And yes, we still make many mistakes.
अभी भी हम कुछ गलतियां करते हैं.
We still got a lot of craving.
अभी भी हमें बहुत सारी तृष्णा है.
But hopefully it's getting less and less.
लेकिन हम आशा कर सकते हैं दिन ब दिन ये कम होती चली जाएगी.
That's how we can tell whether we're making progress.
इसे हम अपनी प्रगति कह सकते हैं.
Are we getting less attached?
क्या हम कम से कम आसक्त हैं?
Are we experiencing therefore more and more happiness and detachment? Are we experiencing more and more happiness and detachment?
तो क्या हम ज्यादा से ज्यादा आनंद अनुभव करते हैं और अनासक्ति को भी अनुभव करते हैं?
Are we experiencing the bodhyangas?
यानी क्या हम बोध्यांगों को अनुभव करते हैं?
This is the consequence of practicing the spiritual life.
तो आध्यात्मिक जीवन का यह परिणाम है.
So the Buddha says we need to acknowledge suffering.
तो बुद्ध कहते हैं कि हमने दुख को जानना चाहिए.
We need to get rid of craving.
तो तृष्णा को हमने निकाल देना चाहिए.
We need to realize for ourselves nirvana.
तो हमने ये जानना चाहिए कि मैं निर्वाण पा सकता हूँ.
And we need to develop the path.
और हमने वह जो मार्ग है उसे विकसित करना चाहिए.
This is what it means to understand and practice the Four Noble Truths.
तो यही बात है कि चार आर्य सत्यों को समझना और जानना.
So what we're doing in this contemplation of the Satipatthana is recognizing, trying to practice these four things.
तो हम यह सतिपट्ठान सूत्र में क्या कर रहे हैं, तो इसे जानते हैं और कार्य कर रहे हैं आर्य सत्यों पर.
We're trying to recognize the true nature of this life.
यानी हमारे जीवन का जो नैसर्गिक जो स्वभाव है उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं.
Suffering's there.
दुख वहाँ है.
There's just ordinary suffering.
जो सर्वसाधारण जो दुख है.
There's mental suffering.
जो मानसिक दुख है.
And there's this deep sense of spiritual frustration.
और जो बहुत ही गहरा जो आध्यात्मिक असमाधान है.
So we need to recognize this and see it deeply.
तो हम उसे जानते हैं और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं.
And we need to see its cause.
और उसके कारणों को भी हम देख रहे हैं.
That's tṛṣṇa.
वह तृष्णा है.
And we need to get rid of that cause.
और वह जो कारण है उस कारण को हम निकालना चाहते हैं.
We need to try to experience for ourselves freedom from suffering, which is nirvana.
और दुख की विमुक्ति विमुक्ति से जो मुक्त अवस्था है उसे हम देखते हैं जो निर्वाण है.
And we need to commit ourselves more and more deeply to practicing the path that leads to that freedom.
तो हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कटिबद्ध करना चाहते हैं कि वह जो मुक्ति की अवस्था है वहाँ वो मार्ग है वहाँ पर चल सके.
This is what contemplating this dhamma factor means.
तो यही चिंतन है इस धर्म की ये जो अंग है इसके ऊपर इसलिए हम चिंतन कर रहे हैं.
But of course, we're talking about it so far in my terms.
यानी इसे हम अपनी स्वयं की अर्थ से इसे देख रहे हैं.
But each of these needs to be experienced externally as well.
लेकिन हम में से हर एक को इसे बाहर भी देखना है.
We can see it in the world around us.
ये जो पूरी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं उसे भी देखना चाहिए.
We can see suffering everywhere.
हम सब जगह जो दुख है उसे हमें देखना चाहिए.
We know the cause of that suffering.
उसका जो ये दुख का जो कारण है ये हम जानते हैं.
And just as we want freedom for ourselves, we want it for others too.
यानी जब जैसे हम इसे हमारे अंदर ये मुक्ति देखते हैं वैसे उसे औरों के लिए भी देखना है.
Just as we need to practice the path, other people need to practice the path.
जैसे मैं इस मार्ग पर आचरण करना चाहता हूँ वे भी इस मार्ग पर आचरण करना चाहते हैं.
Now if people are going to practice the path, they need to hear about the path. Hear about it.
हाँ जब अरे वो मार्ग पर चलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं मार्ग पर चलने के बारे में.
So we need to tell them.
तो हमें उनको बताना चाहिए.
We need to make sure that people hear the Dhamma.
तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोग धम्मों को सुनना चाहते हैं.
We need to give them the opportunity to practice the Dhamma.
हमने उनको ये अवसर देना चाहिए कि जो धम्म का आचरण कर सके.
So at our Mahaviharas, we need to have Dhamma classes.
तो महाविहार में धम्म वर्ग की जरूरत है.
At our closed balwadis, we need to open them and have Dhamma and other activities.
जो बालवाड़ी हमारी बंद हुई है उसे खुला कर देना चाहिए और धम्म के लिए खुला कर देना चाहिए.
I don't know what the reasons are for any of these things, but we need to sort them out.
मुझे पता नहीं कि क्या कारण है लेकिन हमने उन कारणों को छुड़ाना चाहिए बैठकर.
This is the direct consequence, a direct implication of what the Buddha is saying.
बुद्ध ने जो भी कहा है उसका ये सीधा आचरण करने की बात है।
It's got direct meaning for us as an order and a movement.
हमें एक संघ और आंदोलन के अर्थ से हमें ये सीधी शिक्षा आई है।
If we really see the Four Noble Truths, we will try to help other people.
जब हम सही मायने में चार आर्य सत्यों को जानते हैं, तब हम लोगों को सहायता करना चाहिए।
And we will be trying to help, or trying to follow the path deeply ourselves.
तो अपने स्वयं में भी ये जो मार्ग है उसे और गहराई में आचरण करना चाहिए।
So reflection on the Four Noble Truths is a culmination of the whole set of Satipatthanas.
तो चार आर्य सत्यों पर चिंतन करना यह पूरे जो सूत्र है इसके ऊपर चिंतन करने जैसा है।
And it's useful to come back to our own lives.
और ये बहुत ही फायदेमंद है कि इसको हमारे अपने जीवन के साथ देखना चाहिए।
If we really understand this Satipatthana, this contemplation of Satipatthana, we'll realize we've got to practice more and more deeply.
अगर हम सही मायने में अगर सतिपट्ठान की इस चिंतन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सचमुच मैंने और गहराई में आचरण करना चाहिए।
And we need to spread the Dhamma much, much more vigorously.
और धम्म का आचरण धम्म का प्रचार और प्रसार हमने और ज्यादा शक्ति से और उत्साह से करना चाहिए।
It does seem as if Dhamma teaching has gone down amongst us. I don't know why.
मुझे पता है कि हमारे बीच में धम्म शिक्षा देने की जो प्रेरणा है वो कम हो गई है, पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है।
I think the only place where there's Dhamma teaching going on in Pune is in camp.
और मुझे पता है पुणे में जो धम्म शिक्षा धम्म वर्ग जो होते हैं वो केवल कैंप में चल रहे हैं।
I don't know about Pimpri, but certainly in Pune itself.
मुझे पता नहीं पिंपरी में क्या होता है, लेकिन पुणे में ऐसे हो रहा है।
And that really is quite shocking.
और ये सचमुच धक्का देने वाली बात है।
We've got more order members than ever.
भारत में जितने भी धर्माचारी है उसी तुलना में पुणे में ज्यादा लोग हैं।
But less Dhamma going on.
लेकिन बहुत कम धम्म जो है वो जा रहा है।
Maybe my information is wrong. Please forgive me if it is.
हो सकता है कि मेरी जो जानकारी है वो गलत हो सकती है, तो मुझे माफ कीजिए।
But anyway, whether it's right or wrong, we could do more.
भले ही मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन हमने और ज्यादा करना चाहिए।
This is one aspect of this reflection, these reflections.
तो ये जो चिंतन के जो समूह है इसका यह अर्थ होता है।
So the Buddha says, well, we need to practice these four Satipatthana.
Why?
We do need to. He says we need to.
बुद्ध कहते हैं कि ये चार सतिपट्ठानों का आचरण हमने करना चाहिए।
And he says that these are the direct path to Nibbana.
और वे कहते हैं कि ये निर्वाण की ओर पहुंचने का सीधा मार्ग है।
And he said that if we practice them seriously for 7 years, we'd either become Buddhas or we'd become non-returners.
वे कहते हैं कि अगर 7 साल तक अगर हमने इसका आचरण करते रहे तो अगर हम बुद्ध नहीं हो सके तो अनागामी जरूर हो जाएंगे।
7 years, not so long.
7 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं है।
But then he says, no, not 7 years, 6 years.
वो ऐसा भी कहते हैं कि 6 साल ही नहीं, 7 साल ही नहीं, 6 साल भी।
Not 6 years, 5.
6 साल ही नहीं, 5 साल में भी।
Not 5, 4.
5 नहीं, 4.
Then he says, not even half a year.
और फिर वे कहते कि 6 महीने भी नहीं।
Not even 7 days.
वो केवल 7 दिन भी नहीं।
Even one day, if you practice seriously, you can gain Buddhahood.
वे कहते हैं कि एक दिन भी अगर हमने इसका बहुत ही गंभीरता से आचरण किया तो हम बुद्ध हो सकते हैं।
So it's possible.
तो यह शक्य है।
बहुत कठिन है। But it's possible.
लेकिन वह शक्य है।
If you really practice mindfulness in the sense that we've looked at it seriously, you would be free.
अगर सचमुच में हमने जो कुछ भी देखा है उस तरह से अगर गंभीरता से उसका आचरण करते हैं तो हम अपने आप को मुक्त पाएंगे।
You cross beyond all dukkha.
हम सभी जो दुख है उसके उस पार चले जाएंगे।
So we need to take these words very seriously indeed.
तो ये जो शब्द है उसको हम लोगों ने सचमुच बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए।
Perhaps we've got a clearer idea than ever before of what the path consists in.
इसके पहले हमें मार्ग के बारे में इतनी ज्यादा स्पष्टता नहीं होगी जितनी यहाँ पर आई हुई है।
So we need to think about how we can practice it more fully.
तो हमने इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसका पूर्णतः मैं कैसा आचरण कर सकूं।
And tomorrow I'll be asking you to do that thinking and to come up with some conclusions.
और कल हम देखेंगे कि इसके बारे में सोचिए और कुछ अंतिम निर्णय के साथ यहाँ आइए।
So we'll have a chance when we leave here to continue practicing the four Satipatthanas.
तो हमारे लिए एक मौका है कि भले हम यहाँ से चले जाए लेकिन इसका हम आचरण सतिपट्ठान का आचरण कैसे कर पाते हैं.
So please be thinking about this over the next 24 hours.
तो आने वाले 24 घंटों में इसके ऊपर ज्यादा सोचिए.
And remember, in 24 hours, you can gain enlightenment.
और इसे या इस बात को याद रखिए कि ये जो 24 घंटे हैं, हो सकता है कि आपको बुद्धत्व प्राप्त होगा.